वसुदेवसुतं देवं कंसचाणुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीराम जय राम जय जय राम 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 राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसव संत नमो हरि रामामुर भवन में यापद समान कोई अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अव कृपा मो पर करहु यो हरि देव कहंत सद्गुरु से दीविनति परब्रह्म सो परणाम अनंत कोटि संत रामदास निसदिन करूं सलाम नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। एक सिद्धांत की बात बताई जाती है, बहुत रहस्य की और दामी बात है। मैं जब सबको पूछने के लिए समय देता हूँ उस समय कोई भाई पूछता है तो उसका पूछना न्याय है, अधिकार है। सेठ जी बोलते हैं, उस समय उसे कोई रोके तो उसका रोकना उचित नहीं है। जिस समय धाराबद्ध व्याख्यान चल रहा हो उस समय बीच में कोई पूछे तो उसे मैं स्वयं ही निषेध कर देता हूं कि आप अपनी बात नोट कर लें या याद रखें और व्याख्यान की समाप्ति पर पूछ लें। अभी पूछने से प्रसंग का धारावाहिक प्रवाह टूट जाएगा, क्योंकि उस समय किसी का पूछना बेकायदे का है, इसलिए रुकने के लिए प्रार्थना कर दी जाती है। रहस्य की बात ये समझनी है कि जिस समय मौका दिया जाता है उस समय पूछने वाले की बात किसी दूसरे को अनुचित मालूम देती हो तो उसे सहन करना चाहिए, अथवा उसे यदि उसका पूछना बर्दाश्त न हो तो उठकर दूसरी जगह चला जाए, वहां जाकर भजन ध्यान करो। हमारे समय के लिए हम स्वतंत्र हैं, आपके समय के लिए आप स्वतंत्र हैं। यदि मैं सबका अपने ऊपर अधिकार मानूं तो उस मेरे अधिकार को दूसरा कोई अकेले कैसे छीन सकता है। इस न्याय से सभी पूछ सकते हैं। कोई यह कहे कि आपका हमारा अधिक प्रेम है, हम आपके अनुयायी हैं, ये दूसरे आदमी तो नए हैं, ये क्या जाने, वे आपके भाव को पहचानते नहीं, अतः आपका समय खराब करते हैं, तो हम कहेंगे कि आप हमारे मित्र हैं तो हम जिस तरह पूछने का मौका देते हैं उसमें आपकी भी सम्मति होनी चाहिए, हमारी प्रसन्नता में आपको प्रसन्न होना चाहिए, जिसे हम अच्छा समझे उसे आप अच्छा समझें, यदि हम उसकी बात सुन रहे हैं तो आप भी सुनो। अब कोई कहे कि आप तो बर्दाश्त कर सकते हैं हम नहीं, तो आप अलग बैठ सकते हैं तो हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा, तो आप यदि व्यर्थ गया समझते हैं तो व्यर्थ ही जाएगा। आपने इतने वर्ष इतनी बात सुनकर क्या यही सार निकाला कि अपने मन की बात सुननी दूसरे के मन की बात नहीं सुननी, तो ये आपकी बात ठीक नहीं है। आपने आज तक जितनी बात सुनी है और उसे कितना काम में लिया है यही देखना चाहिए। यदि सुना हुआ काम में लाते तो आज तक आपका कल्याण हो सकता था। पूछने वाला दूसरा भाई शायद काम में भी ले सकता है, ऐसी परिस्थिति में उसको रोकना ठीक नहीं है। अतः यदि काम में लावे तो ये बात बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकती है। जो आदमी हमारी स्वतंत्र बात सुनना चाहता है किंतु दूसरे के प्रश्न कर लेने पर उसको वह मौका नहीं मिलता, तो उस चुप साधने वाले के लिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमको इस बात का ख्याल है कि जितना समय बाकी रहेगा उसे ही हम अधिक दामी बनाने का प्रयत्न करेंगे। फिर पूछने वाले को अगर हम बुरा समझेंगे तो हम अपने आप ही मना कर देंगे। अरे आप मना करते हैं उसका मतलब तो यह है कि आप अपने को अधिक बुद्धिमान समझते हैं। यदि आप कहें कि फिर हमें क्या करना चाहिए, इसका उत्तर है जो होता है उसको भगवान का विधान और लीला समझकर प्रसन्न होना चाहिए। आप कहें कि हमारे में इतनी श्रद्धा नहीं है, तो भी आपको दूसरों के हित के लिए अपने समय का त्याग कर देना चाहिए। जिसको हम अपने से अधिक बुद्धिमान मानते हैं वह कहे वैसा ही करे, अपनी बुद्धि न लगावे, तो इसमें अपने घाटे में नहीं रहेंगे। अब एक और दूसरे सिद्धांत की बात अपना दृष्टांत देकर समझाते हैं। एक भाई मेरी पूजा आरती आदि विशेष सत्कार करता है, दूसरा भाई मेरी पूजा आरती तो नहीं करता पर मेरी सेवा करके शरीर को आराम पहुंचाता है, तीसरा भाई मेरे आचरणों का अनुकरण करता है, चौथा भाई मैं जो व्याख्यान देता हूं उसके अनुसार जीवन बनाता है, तो इसमें जो व्याख्यान के अनुसार जीवन बिताता है हमारी दृष्टि में उसके कल्याण में कोई शंका नहीं है, क्योंकि जो कुछ कहा जाता है सो गीता रामायण आदि शास्त्रों के अनुकूल कहा जाता है, मैं तो केवल अनुवाद मात्र कर देता हूँ। गीता जो कि भगवान की वाणी है, वेद जो कि अपौरुषेय है, तथा आर्ष ग्रंथ है जो कि भगवान को प्राप्त होने वाले महापुरुषों के वचन है, जिन्हें हम आदर्श मानते हैं उनके अनुसार मैं पालन करूं तो मेरा हित है और आप पालन करें तो आपका हित है, इनके पालन करने से कल्याण होने में कोई शंका नहीं, उसके लिए मैं गारंटी दे सकता हूं। ये गारंटी देने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसी ग्रंथों के आधार पर कुछ सीखा है, वही मैं कहता हूं, मेरी अपनी निजी बात तो है नहीं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सत्य वचन आधीनता परतिय मातु समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान, सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री तुलसीदास जी जमान कह करके अपनी गारंटी देते हैं। सो अगर वे यह कहते कि मेरी सेवा करने से भगवान मिलते हैं तो कोई काम की बात नहीं थी, पर यहाँ यह वेदों और शास्त्रों की बात थी, इस पर उनका पूरा विश्वास था, उनकी अनुभव की हुई बात थी, अतः तुलसीदास जी गारंटी दे सकते हैं, उनका यह कहना युक्ति संगत है। यदि मैं कोई भी व्यक्तिगत बात कहूं कि मेरी सेवा करने से उद्धार होगा तो ये मेरा कहना अनुचित और अहंकार युक्त है, ये तो हमारे हित के लिए केवल भगवान ही कह सकते हैं। मन मना भाव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, केवल भगवान कह सकते हैं, ये तो हमारे हित के लिए भगवान ही कह सकते हैं, क्योंकि वे सदा मुक्त हैं, न उनमें अहंकार है न उनमें किसी प्रकार की कामना है। पर मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, क्योंकि मेरा जन्म गुण और कर्म के अनुसार हुआ है, और गीता कहती है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्यकर्तारम अव्ययम्। मैं तथा आप लोग सभी गुण और कर्मों के अनुसार ही जन्म लेते हैं, परंतु गीता में भगवान ने कहा है अजो पिसन्न अव्यय आत्मा। आज बोलिया को नहीं, आज श्लोक बोले नहीं अपने, तो सेठ जी बोल रहे हैं, तो भगवान यूं करावे, संतर भगवान ऐसे कृपा करते हैं, अपने रोज नियम है 5 श्लोक का भूल गए तो यूं दे यूं आए। मैं तथा आप लोग सभी गुण और कर्मों के अनुसार जन्म लेने वाले हैं, परंतु भगवान ने गीता में कहा है अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हम लोगों का जन्म और कर्म दिव्य नहीं होते, भगवान का जन्म दिव्य होता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ऐसी बातें भगवान ही कह सकते हैं। अजोपि सन्न अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं अविनाशी हूँ और उत्पन्न नहीं होता हूँ फिर भी, और प्राणियों का ईश्वर होता हुआ भी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ये बात कौन कह सकता है? भगवान कह सकते हैं। तो भगवान ये भी कह सकते हैं कि मनमना भाव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामई वैश्यसी युक्तवेवम आत्मानम मत परायण है, तो मेरे मन वाले हो जाओ, मेरे में प्रेम रखने वाले हो जाओ, मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ, तुम मुझे ही नमस्कार करो, किसी को भी नमस्कार करो ना, तो ये सोच के करो कि इसमें भगवान है, उनको नमस्कार करता हूँ। कई लोग सोचते हैं हम बड़े हैं हम कैसे नमस्कार करें, अरे भगवान से तो बड़ा कोई है ही नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं, तो कहते हमारे में ही भगवान है, हम हमको ही नमस्कार कर लेंगे, ऐसा भी कहा किसी ने कि हम भी भगवान ही हैं, हम अपने को ही नमस्कार कर लेंगे, तो ये कुतर्क की बात है, ये साधन भजन में लाभ वाली बातें नहीं है, ये लाभ वाली बातें नहीं होती। अपने को तो सब में भगवान समझना, अपने में ही भगवान समझना है और दूसरों में भी भगवान समझना है। तो अपने में भगवान समझना चाहिए ये समझ करके कि हमारे भगवान मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं सब में हूं, सबको प्रणाम करो, मेरे अंदर रहने वाले भगवान मुझे प्रणाम कराने करने के लिए नहीं, दूसरों को करने के लिए कहते हैं, मेरे अंदर भगवान ने ये हमको प्रेरणा दी, सब में भगवान देखो, ऐसा समझ करके प्रणाम करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होता है, वो मेरे परायण होने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। क्या ये बात मनुष्य कह सकता है? नहीं कह सकता। अतः श्रुति स्मृति युक्ति इतिहास पुराण गीता रामायण आदि के आधार पर जो बातें सुनाई जाती है उसके अनुसार जीवन बिताना सर्वोत्तम बात है। जो भी आपकी सेवा में प्रार्थना और विनय के रूप में निवेदन किया जाता है उसको आप काम में लाओ। मैं अपने को आपका बड़ा आभारी मानता हूँ, मेरे पर आपकी कृपा मानता हूँ। आप कहेंगे कि काम में लाने से फायदा हमें होगा, हमने आप पर क्या कृपा की, तो इसका उत्तर यह है कि आप हमारी बात सुनने आवे तभी तो मैंने व्याख्यान दिया है। मैं जो बात आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ वह प्रथम एक नंबर में मेरी बुद्धि में आती है, दो नंबर में मेरे मन में आती है, तीन नंबर में वाणी से कहता हूँ, चार नंबर में आप उसे सुनते हैं, पांच नंबर में उसे आपका मन पकड़ता है, छह नंबर में आपकी बुद्धि समझती है। तो जो बात मेरी बुद्धि में आती है वह सबके सब मन की कल्पना में नहीं आ सकती, जितनी कल्पना करता है उतनी वाणी से नहीं कही जा सकती, जो कही जाती है वह आप लोगों का मन इधर उधर चला जाने से पूरी सुनने में नहीं आती, जो सुनते हैं वो सब की सब याद नहीं रहती, और जितनी याद रहती है उतनी बुद्धि में धारण नहीं होती। इतने पर भी आपको लाभ होता है, फिर कहने वाले को तो विशेष लाभ होना चाहिए। अतः मेरा ये कहना बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों का मैं आभारी हूँ, क्योंकि आप लोगों के निमित्त से ही तो मेरे हृदय में बातें पैदा हुई हैं, नहीं तो यहाँ बैठकर अकेला इस बड़ के थोड़ो ही सुनाता। अब दूसरी बात आपको बताई जाती है, मैं जो आपकी सेवा में कुछ कहता हूँ इसमें यदि मैं दलाली चाहूँ तो मुझे दलाली मिल सकती है, किंतु सुनने वाले न मिले तो दलाली भी कैसे मिले, अतः इस कारण से भी मैं आपका आभारी हूँ। आप यदि कहें कि ये आभार दूर कैसे हो, तो इसका उत्तर यह है कि आप किस उद्देश्य से आए हो, क्यों हमारे पास सुनने आए हो, उसकी पूर्ति हो तब मैं आपके ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। आप लोगों के यहाँ आने का उद्देश्य अपनी आत्मा के उद्धार के लिए है और वह मेरे सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि उद्धार का सामर्थ्य केवल भगवान में ही है। भगवान ही आप सबका उद्धार करके मुझको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जैसे किसी मनुष्य पर ऋण बहुत हो जाता है और वो चुकाने में असमर्थ होने के कारण सरकार की शरण में चला जाता है, फिर सरकार उसकी पूंजी के अनुसार महाजनों को, अबे लकीटा करेड़ा है पुराने जमाने समझा तो हाँ को नहीं, एकाना दुआना चौकाना चाराना चुकत करते हैं, किंतु भगवान पूरा का पूरे सोलाना चुकत करते हैं। जो हमारे आचरणों का अनुकरण करता है उसका उद्धार होने की हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे आचरण कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हो सकते हैं, सभी आचरण कल्याण करने वाले नहीं होते। यदि हमारे ऐसे सारे आचरण कल्याण करने वाले होते तो बात ही और होती। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है दूसरे लोग उसी उसी के अनुसार चलते हैं, और वो जो बात बोलता है लोग उसका अनुवर्तन करते हैं। आचरणों का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, वाणी का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। वाणी का प्रभाव भी तभी पड़ता है जब वो कहा हुआ उसके आचरण में आया हुआ होता है, तब हम गारंटी दे सकते हैं। उपनिषदों में कथा आती है कि आचार्य अपने शिष्य को स्नातक बनाकर विदा करते समय उपदेश देते हैं, वेदमनुच्याचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति। क्या माने आचार्य वेदों को पढ़ाने के बाद अपने शिष्य को यह आज्ञा देता है, क्या सत्यम वद सत्य बोलना, धर्मम चर धर्म का पालन करना, स्वाध्यायान मा प्रमद है स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद मत करना। स्वाध्याय माने स्व अध्याय, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कौन है, मेरे साथ क्या है, मैं इस संसार में किस काम के लिए आया हूँ, इत्यादि जो बातें हैं ना, ये स्वाध्याय है। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सी ही। अपने आचार्य के लिए प्रिय वस्तु ला करके अपने प्रजातंतुओं का किसी प्रकार से व्यवच्छेदन मत करना, माने अपने गृहस्थाश्रम में जाओ तो अपने परिवार का उच्छेदन मत करना, सनातन परंपरा को चालू रखना, सत्यान मा प्रमदितव्यम सत्य से प्रमाद मत करना, धर्मान न प्रमदितव्यम कुशलान मा प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम अपने कल्याण के लिए कभी भी प्रमाद मत करना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन ये जो सत्संग वगैरह है इनसे कभी भी मन नहीं चूकना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, माने तुम माता के अंदर परमात्मा की बुद्धि रखना, पिता के अंदर परमात्मा की बुद्धि रखना, आचार्य में परमात्मा की बुद्धि रखना, अतिथि में परमात्मा की बुद्धि रखना, और अंत में जो खास बात कही यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपासितव्यानि नो इतराणि। जो हमारे आचरण तुमको अच्छे लगे हों उन्हीं का ही तुम आचरण करना, दूसरों का न मत करना। और जो हमारे आचरण तुमको पसंद नहीं आए हैं उनका तुम कोई आचरण मत करना। हमारे कर्म और हमारे आचरणों में अच्छी अच्छी चीज लेना, जो तुम्हारे पसंद में नहीं आए उसको छोड़ देना। जब इतने बड़े बड़े आचार्य ये कह सकते हैं कि भाई हमारे आचरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, तो मैं किस आधार पर कह दूं कि मेरे सारे आचरण अच्छे हैं और उनका अनुसरण करने से कल्याण हो सकता है? ये तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी। मेरे आचरण में जो कोई शास्त्रानुकूल आचरण प्रतीत हो और उनको कोई काम में लावे तो उसका मैं आभारी हो सकता हूं। जो शरीर को आराम पहुंचाता है, सेवा करता है, उसके लिए भी कल्याण होने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि यह उससे भी नीची श्रेणी की बात है। जो मेरी सेवा करता है उसका आभारी तो हूं, क्योंकि मैं बदले में सेवा नहीं करता, उसका ऋणी हूं, पर मेरी सेवा से कल्याण हो जाएगा यह विश्वास बिल्कुल नहीं दिला सकता। यदि वह मेरे अच्छे आचरणों का अनुकरण करेगा तो उसे अच्छा फल मिल सकता है, पर मेरी सेवा से कल्याण हो जाए ये मैं नहीं कह सकता हूं। जो मेरी झूठन खाना, मेरी पूजा करना, मेरा ध्यान करना, मेरी चरण धूली लेना, चरण धोना आदि करना चाहता है, वह तो मुझ पर कलंक लगाता है। यह क्रिया मेरे मन के अत्यंत विरुद्ध और अन्याय युक्त है, अतः मैं इसका घोर विरोध करता हूं। क्योंकि कोई ऐसा करे तो वह स्वयं अपना, मेरा और संसार का सबका अहित करता है, वो नरक का भागी होता है, क्योंकि इसका दूसरों पर बुरा असर पड़ता है। दूसरे समझते हैं कि अगर इनकी सम्मति नहीं होती तो ये लोग क्यों जूठन खाते, क्यों पूजा आरती करते, क्यों चरण धूली लेते, तो इनका खुद का भीतर से कोई इनको ही समर्थन है, ऐसा मानते हैं। इस चौथे के सिवाय ऊपर के जो तीन आदमी हैं जो मेरा सेवा करते हैं, आचरण में लाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उनका मैं ऋणी हूं, लेकिन ये जो करते हैं इनका मैं ऋणी नहीं हूं। अब मैं आपको कुछ सार बात बताता हूं। जो भाई यहां आए हुए हैं अब वे तो जाने वाले हैं, इन सार बातों को समझें, स्वयं पालन करें, फिर दूसरों में इनका प्रचार करें। प्रचार तभी अच्छा होता है जब वो स्वयं पालन करें। सत्संग में सुनने वाली माताएं अपने घर में यदि सत्संग के अनुकूल व्यवहार चालू कर दें तो देखो प्रत्येक घर के अंदर सत्संग का प्रचार होगा, सबके सत्संग में रुचि होगी। और आजकल देखते हैं सत्संग तो सुनते हैं पर व्यवहार वैसा का वैसा ही, न झगड़ना कम हुआ, न ज्यादा बोलना कम हुआ, न क्रोध कम हुआ, तो और लोगों की सत्संग से अरुचि होती है। ऐसे आदमी सत्संग के धक्का लगाते हैं, ये बहुत अन्याय की बात है। तो स्वयं पालन करें फिर दूसरों में प्रचार करें, क्योंकि वही पुरुष प्रचार करता है तो स्वयं पालन करता है। स्वयं पालन न करे तो दूसरों पर असर पड़ेगा ही नहीं। जो बात हमारे लिए फायदे की है वह सबके लिए फायदे की है, इसलिए अच्छी चीज का लोगों में प्रचार करो। अतः यहां जो नियम बताए जाते हैं उनका स्वयं पालन करके लोगों में प्रचार करो। नियम यह है, पहला, हर समय भगवान को याद रखने के लिए यथाशक्ति कोशिश करो, अर्थात अपने मन में यह निश्चय कर ले कि हम यथाशक्ति हर समय भगवान को याद रखेंगे, जान करके कभी नहीं भूलेंगे। पहला नियम है। अब कोई कहेगी यथाशक्ति का क्या अर्थ है, यथाशक्ति का सीधा अर्थ है अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करो। भगवान का नाम जप है, स्वरूप का ध्यान है, ये बहुत अच्छा है। जप वाणी या श्वास से करें और ध्यान मन से करें, और दोनों यदि मन से किया जाए तो कहना ही क्या है। इधर मन से तो ध्यान और वाणी और श्वास से जप, श्वास से भी यूं श्वास से जप होता है। ये श्वास से जप होता है और वाणी तो सीधी बोलते हैं राम 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 राम, वैखरी वाणी। यदि किसी से जब ध्यान दोनों एक साथ नहीं बने तो नाम जप या स्वरूप का चिंतन दोनों में से एक करे तो भी काम चल जाएगा। इस नियम का पालन सदा सर्वदा आजीवन करता रहे। कोई कहे कि बीच में भगवत प्राप्ति हो जाए, अपना कल्याण हो जाए, तो फिर नाम लेने की जरूरत ही क्या है। सो अपना कल्याण होने पर लोक संग्रह के लिए अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। वास्तव में तो जिसको भगवान मिल जाते हैं उससे उपयुक्त साधन छूट नहीं सकता है। और जो कहते हैं कि साहब अब जरूरत क्या है, छोड़ते हैं, उनको भगवान मिले ही नहीं है। भगवान मिलने पर नाम जब छूट जाए, साधन भजन छूट जाए, असंभव है। महात्मा पुरुष तो तन मन धन से दूसरों के हित के लिए कर्म करना कभी छोड़ते ही नहीं। दूसरी बात, स्त्रियां दूसरे पुरुषों को पिता भाई के समान समझे, छोटों को बेटे के समान समझे, बेटे से भी ज्यादा समझे, और पुरुष पर स्त्रियों को माता बहन के समान समझे, इसके लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। मन से या दृष्टि से भी दोष घटित हो सकता है। यदि दोष घट जाए तो अपने को बार बार धिक्कार दो और भगवान के शरण होकर सावधानी के साथ भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान ये मेरा मन क्यों खराब हो गया। अर्थात काम क्रोध आदि भी शत्रु आक्रमण करे शत्रु के समान समझो, और कोई सबल शत्रु हमको मारने लगे तो हम जोर से पुकारते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, इसी प्रकार हे नाथ बचाओ, इस प्रकार पुकार लगाओ। इस तरह पुकार लगाने पर काम क्रोध आदि शांत हो जाते हैं। जैसे चोर डाकू घर में घुस गए, उनके पास शस्त्र भी है, वो हमसे बलवान भी हैं, परंतु वे अंदर में कसूरवार होने से कमजोर है। जोर से पुलिस को आवाज लगाओ तो चोर डाकू शस्त्रवान होने पर भी भाग जाएंगे। ऐसे ही काम क्रोध के अंदर बल नहीं होता है। आप लोगों ने इनको ज्यादा सिर चढ़ा लिया, इसलिए आप लोग ऐसा मानते, पर यह बात है नहीं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, ये बात हमारी अजमाइश की हुई है। कितनी बढ़िया बात कही सेठ जी, ये बात हमारी अजमाइश की हुई है, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। तीसरा, यदि आप उचित समझें तो नित्य प्रति सबके घर के आदमी इकट्ठे होकर घर में अपनी सुविधानुसार प्रातः काल और रात्रि में गीता है, रामायण है, भागवत है आदि किसी भी ग्रंथ का क्रम से स्वाध्याय करें, चाहे आधा घंटा ही हो, यथाशक्ति प्रयत्न करें। बड़े फायदे की चीज है। जो पढ़ा हुआ हो, जानकार हो, वो सुनावे और दूसरे सुने। घर में जहां तक हो अपने ही आदमियों से सुनने चाहिए ताकि वो भी इस काम में लगे। इसी तरह घर में ही भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजा करें। तो हम तो कहते हैं कि मंदिर से भी जाना घर में पूजा करना श्रेष्ठ है। देखो ये बात सेठ जी बोलते हैं, मंदिर में हम अपने हाथ से पूजा नैवेद्य आरती तो कर नहीं सकते हैं, और घर में हम अपने हाथ से उनकी पूजा करते हैं तो मंदिर में तो केवल दर्शन करके लौट आते हैं, लेकिन घर में अपने हाथ से भगवान को नहलाना, भगवान को सहलाना, भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान के आरती करना सब कर सकते हैं, तो मंदिर की अपेक्षा अपने घर में श्रेष्ठ है। ये बात बहुत दामी है। शरीर से पूजा करने की अपेक्षा मानसिक पूजा और भी दामी है, क्योंकि मानसिकता में, मानसिक पूजा में मन भी इधर उधर नहीं जा सकता। मन से ही भगवान की मूर्ति बनाओ और मन से ही भगवान को अब नहलाओ, अब मन से ही भगवान का शरीर पूछो, मन के ही चंदन लेकर के चंदन चढ़ाओ, भगवान के वस्त्र चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, आरती करो, कहाँ मन जाएगा। किसी किसी मंदिर में पुजारी सदाचारी नहीं होने से कई तरह की बाधा आ जाती है, लेकिन घर में पूजा होती उसमें क्या बाधा आए। अतः घर में पूजा करने की बात दामी बताई है। आप कहेंगे कि आपके घर में स्त्रियां पूजा करती हैं, आप भी करते हैं क्या, तो कहना तो नहीं चाहिए, पर कहा जाता है मैं मानसिक पूजा करता हूं। सेठ जी के घर में मूर्ति की पूजा करती थी सेठ जी के घर से वगैरह, तो कह दिया कि आपके तो घर में स्त्रियां पूजा करती हैं, आप करते हो क्या। तो कहा कि ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर कह देता हूं मैं मानसिक पूजा करता हूं। सेठ जी के घर के थी घरवाली, बहुत भोली और सीधी थी वो। महाराज जी कहते थे वो एकदम बहुत भोली सीधी और थोड़ी थोड़ी तुतलाती बोलती थी, एकदम सीधी सादी। चौथा, नित्य बलि वैश्व देव करे। बलि वैश्व देव करना एक प्रकार से सारे संसार को भोजन करने के समान है, बहुत उत्तम है, इसमें कोई विशेष खर्च भी नहीं है। चिन्ह तो कर दिया, लेकिन बलि वैश्वदेव की वो पूजा नहीं। बलि वैश्वदेव की पुस्तक आती है। पांचवा, घर में जो बड़े हैं प्रातःकाल उठकर उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने शरीर का तप बताते हुए पहली बात कही है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अपने से बड़ों को पूजन करने से शारीरिक तप होता है। आप लोगों में से जो नहीं करते हैं उनको भी घर पर जाकर यह काम शुरू करना चाहिए। आपको इस प्रकार करते देखकर आपके बालकों पर भी संस्कार पड़ेगा। आप अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे तो आपके बालकों के लिए आप बड़े हैं तो वो भी प्रणाम करेंगे, ये बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। छठा, जैसे आपने माला फेरने का नियम लिया है उसका आप तो पालन करें ही, घर वालों को भी नियम दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु दबाव पूर्वक नहीं, बड़े मीठे भाव से थोड़ा थोड़ा नियम देकर उसको बढ़ाते बढ़ाते करना चाहिए। घरों में यज्ञोपवीत होते हुए भी गायत्री और संध्या नहीं करते, उन्हें छोटे हो तो बहुत प्यार से कहो कि बेटा तुमने जनेऊ ले रखी है, इस जनेऊ का आदर करो, गायत्री संध्या तो करो। और बड़े हो तो उनसे प्रार्थना करो कि साहब आपने ये जनेऊ रखी है, इस जनेऊ का क्या नियम होता है, जरा हमको भी बताओ, तो वो वैसा करेंगे तो आपका उनके द्वारा चालू हो जाएगा। गीता के प्रचार की बात कल कही थी। भगवान ने कहा, ये इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्व विधास्यति भक्तिमयी परांकृत्वा मामे वेश्यत्य संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। यह गीता मेरी परम गोपनीय रहस्य को बताने वाली है। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के हृदय में इसको आधान करता है वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करके मुझे प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। स्विच ऑफ कर दो भाई। सभी मनुष्यों में उसके समान मुझे कोई श्रेष्ठ प्रिय नहीं लगता जो इस गीता का प्रचार करता है, और आगे भी कोई ऐसा नहीं होगा जो गीता के प्रचार करने वाले से बढ़कर मेरा प्रिय कोई हो। जब मैंने गीता पढ़ी और ये श्लोक पढ़े तो मेरे ऊपर बड़ा असर पड़ा कि भगवान को इसका प्रचार बहुत प्रिय है। और इसके प्रचार करने की बात मेरे भी दिल में आई, अतः आप लोगों को भी भगवान की भक्ति करते हुए यथाशक्ति गीता के प्रचार की चेष्टा करनी चाहिए। आठवां, आपकी जीविका के लिए, आप आजीविका के लिए कभी झूठ मत बोलो, कपट मत करो, चोरी मत करो। पेट भरने के लिए क्या इतने बड़े दुर्गुणों को अपना लिया? झूठ बोलना महान पाप है। नाप तोल वाणी आदि से कपट करना, वस्तु के साथ और रूप और भाव बताकर व्यक्ति के साथ कपट करना, ये बहुत घातक चीज है। इसका परिणाम अभी आपको नहीं दिखता है, अभी आपको दिखता है रुपया, लेकिन इसका परिणाम आपके सामने आएगा तो आपको बहुत कष्ट होगा। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। यदि धर्म का पालन करते हुए मृत्यु हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें दुगना लाभ है। मृत्यु तो आने वाली है, मृत्यु तो आने ही वाली है, चाहे आप चोरी करो, झूठ करो, कपट करो, चाहे मत करो, लेकिन आप धर्म का पालन करेंगे और मरेंगे तो वो मृत्यु आपके लिए कष्टदायक नहीं होगी और आगे भी कष्ट नहीं होगा। हमें न्याय से अन्न नहीं मिलता, और अन्याय न करने के कारण अन्न के बिना मरना पड़े तो ये मरना हमारे लिए कल्याण का साधन बन जाएगा, क्योंकि हम धर्म के लिए मरे, अन्याय तो नहीं किया ना। श्रेयान स्वधर्मो विगुण है पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय है पर धर्मो भयाव है। अपना धर्म चाहे गुण रहित हो, दूसरे का धर्म चाहे कितना ही अच्छा हो, पर अपने धर्म में ही अपने को रहना चाहिए, उसी से ही कल्याण होगा। नवी बात, स्वाद के लिए भोजन मत करो, शौकीनी मत रखो, ऐश आराम भोग ये मत, इसमें वृत्ति मत लगाओ। करने योग्य काम को तो न करना और न करने योग्य काम को करना, ये प्रमाद है। अकर्मण्यता, दीर्घ सूत्रिता, अभी क्या है कल कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे, ऐसे दीर्घ सूत्रिता, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, ये बिल्कुल हटाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग और द्वेष, ये आपके महान शत्रु हैं, इनसे सावधान रहो, ये बड़े दुर्गुण हैं। झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, मदिरापान, मांस भक्षण, जुआ खेलना, हिंसा करना, लहसुन प्याज खाना, ये बड़ा दुराचार है। तथा चौपड़, ताश खेलना, नाटक सिनेमा आदि में जाना, और भांग, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना, दिन में सोना, ये दुर्व्यसन है, दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना, दिन में सोना ये दुर्व्यसन है, इनको विष के समान समझकर सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। एक संत ने कहा कि आदमी को 2 घंटा नींद लेनी चाहिए, 2 घंटा। तो किसी विनोदी पुरुष ने कहा कि ये 2 घंटा तो हमारा दिन का समय है, रात्रि का समय बताओ। 2 घंटा तो दिन में सोने का है, रात्रि में कितना सोए ये बताओ। सेठ जी, दिन में सोना नहीं। सेठ जी कहते हैं कि घर में कोई दिन में सोवे तो जार बीरा पग दबाओ, आराम करो, आराम करो, आराम कर लो। वो कहे यूं थे पग दबाओ, कहने आराम करो थे नींद ले रहे हो, आराम करो, पग दबाओ बीरा। इनको विष के समान समझना चाहिए। दसवां, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, सरलता, विनय आदि सद्गुण, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य का पालन, तीर्थ, व्रत, उपवास, सेवा, परोपकार आदि सदाचार तथा श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, भगवान के लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, मनन और भगवान के स्वरूप की पूजा, नमस्कार इत्यादि ईश्वर भक्ति के जितने उपाय हैं इनको अमृत के समान समझकर सदा सेवन करना चाहिए। इनमें ईश्वर भक्ति के करने से दुर्गुण, दुराचार, प्रमाद, आलस्य, भोग, दुर्व्यसन, दुख और विकारों का अत्यंत अभाव होकर सद्गुण सदाचार अपने आप ही अंदर प्राप्त हो जाएंगे। और कुछ न बने तो भगवान का जप और ध्यान, इसको कभी मत छोड़ो। केवल जप और ध्यान से सब बातें अपने आप हो सकती हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति होकर उसे सदा के लिए परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवान को याद रखने के लिए नाम और स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण